जय माँ। 24 अप्रैल का दिवस है और बहुत विशेष दिन है हम सब के लिए। माता जी के भारत आगमन की वो फाइनल रिटर्न माने बताया है कि वो जब दोबारा भारत आती हैं और निश्चित रूप से आ जाती हैं। उसके बाद 1920 के बाद माँ कहीं नहीं गई। थोड़ा पांडिचेरी के आसपास की जगह, शायद विलियानूर की तरफ, ऑरोविल की तरफ, कुछ एक जगह वो गई हैं। पवित्रदा उनके उनको ड्राइव करते थे और उनके साथ प्रणबदा बैठे होते थे और कभी कभी उनको मृत्युंजय दा भी साथ में होते थे, ड्राइव करते थे। तो एक अद्भुत कहानी है माँ की जीवन लीला, जीवन वृत्तांत श्रीमा श्री अरविंद का, और बिल्कुल एक अवतार की लीला के समान वो है। और अगर हम उसको एक दृष्टि से पढ़ें, और खासकर हम लोग जिनका बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का भारतवर्ष में जन्म हुआ है, तो आध्यात्मिक जीवन की सूक्ष्म बारीकियाँ इतनी सहजता से हम लोग माँ के दूध के साथ पीते हैं, तो उस दृष्टि से जब देखते हैं तो ये कहानी बहुत ही अद्भुत लगती है। माँ ने खुद कहा इट्स लाइक ए फेरी टेल, और कहती है एक दिन ये इस प्रकार से कही जाएगी। तो फेरी टेल का क्या पार्ट है, ये कौन सा भाग है जब माँ आने की बात करती हैं? माँ ने इस दिन का जो सिग्निफिकेंस है 24 अप्रैल 1920 का, माँ ने सिग्निफिकेंस दिया था इट इज़ दी टेंजिबल साइन ऑफ ए डेसिसिव विक्ट्री ओवर दी एडवर्स फोर्सेस। टेंजिबल साइन मतलब जो चीज़ बिल्कुल निश्चित रूप से आपको भौतिक स्तर पर वो हो रही है, आपको पता चलेगा। और एडवर्स फोर्सेस वे आसुरी शक्तियाँ जो संसार में उपद्रव पैदा करती हैं, उन पर निश्चित रूप से विजय का। अब स्वाभाविक है हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग कहते हैं कहाँ, हम तो अभी भी देख रहे हैं एडवर्स फोर्सेस हैं, इधर है उधर हैं। तो माँ किस चीज़ की बात कर रही हैं और उसके क्या परिणाम हैं? तो अब यहाँ पे इसके पीछे की एक बड़ी अद्भुत कहानी है। कहानी इस प्रकार से है कि 1914 में श्रीमा आती हैं और 22 फरवरी को वो चली जाती हैं यहाँ से। तो उनका जो जाना है वो एक उनके लिए, श्रीमा के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। वो एक ऐसा वियोग है जो हम लोग पढ़ते हैं, राम सीता का वियोग, और हम जानते हैं कि कितने साल ये वियोग रहता है। और वास्तव में इस वियोग में भी वो असुर के साथ रहती हैं, अभी उस पर हम लोग टच करेंगे। तो इस वियोग को जब माँ वर्णन करती हैं तो बहुत पढ़ने के बाद प्रेयर्स एंड मेडिटेशन में है वो, तो एक और हृदय एक प्रकार की दिव्य संवेदना से भर जाता है। यह भी पता चलता है कि जगत जननी माँ को सब कुछ पता है, इंक्लूडिंग हम मनुष्यों को भगवान से वियोग का क्या मतलब होता है, कैसे महसूस होता है, क्योंकि उनको सारी पीड़ा को रिप्रेजेंट करती हैं। और उस समय माँ अपने चैतिश सत्ता को श्री अरविंद के पास छोड़ जाती हैं। अब वैसे ये प्रकरण ना वाल्मीकि रामायण में ना रामचरितमानस में, लेकिन है आई थिंक अध्यात्म रामायण में है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि माता सीता जब जाती हैं रावण के पास तो उनकी छाया जाती है, वो अग्नि में अपने शुद्ध स्वरूप को समाहित कर देती है। मतलब उनका जो शुद्ध स्वरूप था वो सदैव श्री राम के पास था। तो माँ अपनी चैत्य सत्ता को यहाँ छोड़ जाती है, तो स्वाभाविक है उसके बाद क्या अवस्था रही होगी उनकी। और फिर वो जाती हैं तो सबसे पहले उन पर आक्रमण होता है, द्वितीय प्रथम विश्वयुद्ध प्रारंभ हो गया था। और चूंकि श्री अरविंद श्री माँ का मिलन ये साधारण नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी मीटिंग नहीं है, क्योंकि इस मिलन से पूरे संसार का कल्याण इस पर आधारित है। जैसे राम सीता का विवाह एक इट्स नॉट अनदर स्टोरी ऑफ अनदर मैरिज, क्योंकि उन दोनों का मिलन, क्योंकि वे दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, एक और श्री अरविंद एक दिव्य हैं जो आए हैं धरती के ऊपर एक विशेष प्रयोजन से, और जगन माता भी दिव्य हैं, लेकिन उन्होंने इस पार्थिव जगत के साथ, मदर अर्थ के साथ, मनुष्यता के साथ स्वयं को आइडेंटिफाई किया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर पार्थिव जगत और भगवान का मिलन हो जाए तो ही कल्याण है, क्योंकि तब पार्थिव जगत के अंदर स्वतः ही जो रूपांतरण चाहिए, जो द्वार खोलना है वो हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग समझे ना समझे, लेकिन ये जो पीछे से शक्तियां कार्य करती हैं, सब दिव्य अदिव्य दैविक आसुरिक, वे जानती हैं इस बात को। और सारी आसुरिक शक्तियां उस समय टूट पड़ती हैं, पृथ्वी पर जितना उपद्रव हो सकता है संभव करें। उस समय आप देखें कि वो कालखंड ऐसा है जहां भारत में भी श्री अरविंद ने जगा दिया है, ना केवल भारत के तेज को और उसकी आत्मा को, और यहां तक कि वो सब कुछ कह दिया है जिसके थ्रू भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। सब कुछ वंदे मातरम में है, जिस पर बाद में पैसिव रेजिस्टेंस, बॉयकॉट्स और आज स्वदेशी, ये सब कुछ उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन 1910 और 1920 के बीच का जो कालखंड है भारतवर्ष में, ऐसा लगता है सब कुछ टूट के बिखर गया। सबको या तो कैद कर दिया गया था, काला पानी भेज दिया गया था, कुछ मर गए थे, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट लगभग समाप्त हो गया था। कब वो प्रारंभ होता है? फिर 21 के बाद धीरे 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 उसमें प्रारंभ होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो माँ जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय वहाँ जाती हैं, तो युद्ध की विभीषिका हैं, तो जगन माता, तो पूरी युद्ध की लपटों को स्वयं वो यज्ञ वेदी बनकर अपने अंदर जलने लगती हैं, जैसे शिव जी ने हालाहल का पान किया था। और ये भी प्रार्थना है माता जी की, अगस्त में, 6 अगस्त के बाद की प्रार्थना है, कि वो बोलती है होलोकॉस्ट, मैंने अपने ही शरीर को यज्ञ रूप में दे दिया है। तो अब पूरा जो युद्ध हो रहा था एक प्रकार से उनके शरीर पर हो रहा था। माँ एक जगह डिस्क्राइब करती हैं कि राष्ट्र कौन सा कहाँ पर उनके शरीर में रिप्रेजेंट करते थे। तो किसी राष्ट्र पर अगर मान लीजिए असुर के पांव पड़ रहे हैं, तो उनके शरीर में उस भाग में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ये पूरा वर्णन है उनका। और उस समय माँ साथ में युद्ध में कार्यरत होती हैं स्वेच्छा से, और जो युद्ध के समय जो सैनिक आते हैं, घायल सैनिक, मृत सैनिक, हर प्रकार की उनकी देखभाल करती हैं। और उसी समय, बहुत कम लोगों को शायद इस बात का ध्यान हो, उस समय से वास्तव में नारी स्वतंत्रता प्रारंभ हुई थी। क्यों प्रारंभ हुई थी? नेसेसिटी के कारण। वार में पुरुष मरने लगे तो एम्बुलेंस कौन चलाएगा, डॉक्टरी कौन करेगा, तो लोगों के पास कोई चारा नहीं था। तो माँ उनमें से हैं जिन्होंने नारी स्वतंत्रता का बिगुल, कोई झंडा लेकर के, वो जो आजकल हम देखते हैं नारी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, सुपर्णखा वाली नारी स्वतंत्रता, उसकी बात नहीं करती। माँ एक योद्धा की तरह युद्ध क्षेत्र में जा करके, और उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर इतना पड़ा वार की, जब हम पढ़ते हैं तो माँ बताती हैं कि इस युद्ध में उन्होंने ये देखा जो लोग मर रहे हैं, एक और वो देखती हैं कि रुद्र की शक्तियाँ, एडवर्स फोर्सेस, काली, ये सब कुछ वो देखती हैं, और कहती है लेकिन जो लोग इसमें आहुति दे रहे हैं उन सबके लिए नई सृष्टि का द्वार खुलने वाला है। ये 1918 में वो कह रही हैं। कहती मैंने उनकी आंखों में वो देखा है कि इस बलिदान के कारण, क्योंकि ये हम लोग की तो परंपरा में ये है कि जो सही युद्ध में अपनी राष्ट्र की, स्वाभिमान की, ग्रेट आइडियल की रक्षा करने के लिए जो प्राण देते हैं, तो वो प्राण की आहुति वीरों की वो व्यर्थ नहीं जाती है, उनके लिए भी, उनके लिए स्वर के द्वार खुल जाते हैं। तो वो जो पीड़ा था उसका इम्पैक्ट माने अपने शरीर पर लिया, और उनको जो अगर आज की भाषा में कहें तो उनको एक एक नस में दर्द होना शुरू हो गया था, नर्वस पेन्स, और वो इतना भयंकर था। माँ कहती हैं जब वो वापस आती हैं, श्री अरविंद को बताती हैं, उसके बाद वो उससे फ्री होती हैं। फिर रूपांतरण जब होता है तब वो वापस उभरता है, 60s की बात है, क्योंकि वो उन्होंने, श्री अरविंद ने उसको हटा दिया था, वो सब चला गया था, वो जो विभीषिका थी, श्री अरविंद ने भी उस विभीषिका को दावानल पिया था, 50 की बात है, जिसके कारण उन्होंने शरीर को त्याग किया। खैर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, पहले तो ये सहती हैं, फिर वो जाती जापान। हम लोग तो बड़े, अरे जापान कितनी अच्छी जगह है, सब कुछ है। हाँ है, बहुत सुंदर है प्राणिक रूप में, लेकिन जापान में आध्यात्मिक स्पंदन नहीं है, यह भी माँ बताती हैं। और क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक अलग कहानी है, वो मंगोल रेस इत्यादि, चीन जापान, तो हालांकि वो राइट विंग है, उसमें हम नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ वर्ष उनको रहना पड़ता है, कुछ वर्ष, ये सब कहानी चल रही, 4 वर्ष का कालखंड है उसमें, 1.5 साल के करीब माँ फ्रंट पे सर्विस देती, फिर वहाँ। तो वहां माँ क्या प्रयास करती हैं, उनका जो बात हुई थी कि जैसे अध्यात्म रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें माता सीता कहती हैं मैं ले गई थी, मैंने स्वीकार किया था रावण के साथ जाना, क्यों, ताकि वो बदल सके, कन्वर्ट हो सके प्रेम के द्वारा। तो उसी प्रकार से उन्होंने जिनसे विवाह किया था उसका प्रयोजन था कन्वर्शन ऑफ द असुर। कौन सा असुर? मिथ्यात्व का असुर, फॉल्सहुड का असुर। और क्यों वो फॉल्सहुड का असुर था उसमें हम नहीं जाएंगे, माने उसका वर्णन किया है काफी कुछ। तो उसके साथ वो नाना प्रकार से दिव्य जननी को, डिवाइन मदर को टॉर्चर करता था, उसमें भी हम नहीं जाएंगे। चाहे वो अपने सिगरेट के उससे हो, और माँ चाहती तो क्षण भर में उसका विनाश कर सकती थी, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था भगवान को, मैं इस बार सृष्टि को प्रेम से रूपांतरित करूंगी, सारा भार अपने ऊपर लूंगी। तो सारे आघात सहती और प्रेम डालती, प्रेम मतलब वो जो दिव्य प्रेम को लेके आई है। और इस प्रकार से उन्होंने प्रयास किया जितना वो कर सकती थी। फिर वो प्रयास एक सीमा पर चला जाता है, और उसी बीच में जब ये सब चल रहा है पूरे संसार में एक और विपदा आ जाती है वर्ल्ड वार के समय ही, वो है स्पेनिश फ्लू। सो अब तो कोरोना काल को ही समझते थे कि प्रलय आ गई, स्पेनिश फ्लू में पता नहीं 10 गुना अधिक लोग मरे थे। फिगर इज एस्ट्रोनॉमिकल, सम 500 मिलियन ऐसे जाता है, कितने लोग वाइप आउट हो गए थे। तो स्पेनिश फ्लू माँ भी अपने ऊपर लेती हैं और फिर उससे वो बाहर आती हैं, उसके पीछे जो सूक्ष्म सत्ता है उसको देखती हैं, पिशाच जो उसके पीछे, नर पिशाच जो है उसको मुक्ति प्रदान करती हैं, उसको दूर करती हैं। वो बड़ी अद्भुत कहानी है, एक दिन सच में इसको वैसे प्रस्तुत करना चाहिए। विल डू इट प्रॉब्ली, माँ की प्रेरणा, माँ का संकल्प अगर हो साथ में तो माँ के 150th ईयर में इट शुड बी प्रेजेंटेड। माँ ने स्वयं कहा है कि इसको प्रस्तुत करना चाहिए, लिखना भी लिख सकते हैं या बोल भी सकते हैं। अब उसके बाद अब ये सारे प्रयास माँ देखती हैं कि मनुष्य तैयार नहीं है बदलने के लिए। उन्होंने सब कुछ तैयार कर दिया है और केवल मनुष्य को कहना है हाँ, परंतु मनुष्य रिफ्यूज करता है। ये सब भाव आएगा, वो जो प्रार्थना आज हम पढ़ने वाले हैं इसका ये बैकग्राउंड है। इस प्रार्थना का बैकग्राउंड माँ 1961 के अपने कन्वर्सेशन में बताती है। हम लोग प्रार्थना पढ़ने वाले September 3, 1919 की जो अंतिम प्रार्थना है उनकी जापान में लिखी हुई, हो सकता है उसके बाद उन्होंने कुछ लिखा हो हम नहीं जानते, लेकिन इस पुस्तक में वो अंतिम प्रार्थना, और माँ कहती भी है एंड ऑफ दिस पार्ट ऑफ द बुक। तो प्रार्थना का ये सब बैकग्राउंड है कि वो बहुत प्रयास करती हैं मनुष्य बदल जाए सीधा, क्योंकि वो जगत जननी है, उनको क्या समस्या है, डिवाइन लव को लेके आई हैं, मिशन अपना जानती हैं। तो प्रयास करती हैं, लेकिन वो देखती हैं कि मनुष्य रिफ्यूज करता है। तो उस दिन, एक दिन उस व्यथा से भरी हुई डिवाइन मदर प्रार्थना करती हैं किसको, वो अभी ह्यूमन रिप्रेजेंट कर रही है ना, तो उस सुप्रीम को, कि मैंने आपको वचन दिया था और मैंने हर संभव प्रयास किया मनुष्य को बदलने का, और विशेष रूप से ये किसके ऊपर है, उनके अपने पति के अंदर, वो सारा जो सबसे डार्केस्ट रेजिस्टेंस उनके अंदर था, वो यहां तक वो जानते थे कि डिवाइन मदर है और वो उनको टॉर्चर कई बार करते थे कि क्या बोल के, मैं जानता हूं तुम मुझे इस संसार के शीर्ष पर बिठा सकती हो, अगर हम पुराणों की भाषा कहें तो तुम मुझे त्रिलोकाधिपति बना सकती हो, सारी शक्तियां दे सकती हो, यही मैं एक्सटेंड चाहता था, असुर ऑफ डेथ, सब कुछ कर सकती हो, लेकिन तुमने सब कुछ श्री अरविंद को दे दिया, मंत्र ऑफ लाइफ दे दिया, तुम उनको सुप्रीम कह रही हो, तुम चाहो तो मुझे सुप्रीम बना सकती हो। ये देखिए उसकी कन्वर्सेशन क्या थी, क्यों रावण इतना आतुर था माता सीता को विशेष रूप से, क्योंकि उसको पता था कि अगर माता सीता मुझे वरण कर लेंगी, मैरिज की बात नहीं हो रही, वरण करना पूरी तरह, तो फिर मैं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, अल्टीमेट पावर मेरे साथ है। पहले उसने शिवजी को लाने का प्रयास किया था, विफल हुआ था, तो वो सुप्रीम से बैठ के प्रार्थना करती हैं और माँ कहती हैं सुप्रीम केम। ये एक वर्बल माँ कहती हैं, दो बार उन्होंने सुप्रीम का वह विजन देखा है और वो इतना अद्भुत है, माँ ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी थी, रियलाइज भी किया था उन्होंने उसको, कहती है गीता के वर्णन से भी कहीं अधिक संपूर्ण और सुंदर। तो सुप्रीम आते हैं, कहते हैं मानो उस अचिंत्य अकल्पनीय, कौन से शब्द यूज करें हम सुप्रीम के लिए, जिनको इनएफेबल अंग्रेजी में एक वर्ड है, जिनके जो आप इंद्रियों से वाणी से मन से अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह उन्होंने मानो एक बहुत विशाल अति विशाल रूप धारण किया था कुछ क्षणों के लिए। और वो आते हैं और मां से कहते हैं ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो तो सब ले रही थी सबकी पीड़ा और सबको प्रेम दे रही थी, ऐसे नहीं होगा। तो मां के मन में स्वाभाविक है ये कि फिर कैसे होगा, तो कुछ नहीं करते हैं, माँ को उठाते हैं, माँ डिस्क्राइब करती हैं लाइक ए जाइगेंटिक बीइंग एंड शी इज लाइक ए स्ट्रॉ, उठाते हैं और उनको उनका मुख वेस्टवर्ड मोड़ देते हैं, वेस्टवर्ड कहाँ से, जापान से, और सीधा इंडिया वो देखती हैं सामने इंडिया और श्री अरविंद खड़े हैं, और फिर वो विजन समाप्त हो जाता है। तो माँ ये जान जाती कि निश्चित रूप से अब ये काम तो मुझे साथ ही करना है, वो पहले भी ये जानती थी लेकिन श्री अरविंद ने हाँ नहीं कहा था। समर्पण देखिए, वो कहती है अगर श्री अरविंद एक बार कह देते रुक जाओ तो मैं तत्क्षण रुक जाती, लेकिन अगर हम मानवीय शब्दों में कहें या एक योगी ने ऐसे कहा था, ही केप्ट हिज हिमालयन साइलेंस, श्री अरविंद का साइलेंस इतना, एक बार मुझे छोटे नारायण जी बता रहे थे कि उन्होंने किताब लिखी श्री अरविंद पर, प्रेरणा हुई और कई कुछ किसी ने कहा था तो उन्होंने उसको श्री अरविंद के पास भेज दिया, उन्होंने भेजा मतलब किसी के थ्रू, किसी ने कहा भेज दीजिए, कहते हैं श्री अरविंद केप्ट हिज हिमालयन साइलेंस, उन्होंने कहा अपने मन में अस्वीकृत हो गया। ये एक छोटी सी घटना है एज एन असाइड श्री अरविंद का। तो बहुत वर्षों बाद उन्हें फिर किसी ने कहा, अपने वाक्य जो थे ना मदनलाल जी, नहीं आपको लिखनी चाहिए, तो उन्होंने, वो कहते हैं जिस चीज को श्री अरविंद ने अस्वीकृत कर दिया मैं नहीं कह सकता हूं, तो उन्होंने कहा नहीं अगर हम माँ से परमिशन नहीं आए, तो उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता है, माँ श्री अरविंद एक है। वो गए माता जी से पूछा, माता जी ने कहा यस। अब इनको बड़ी दुविधा हो गई कि जिस चीज को श्री अरविंद ने मना किया है माँ हाँ कैसे कह सकती है, देखिए भगवान की लीला। तो इसी उथल पुथल में वो बैठे थे, तो उनको एक बड़ा अद्भुत विजन होता है। तो विजन ये होता है कि श्री अरविंद आते हैं और ये भी खड़े हैं, तो श्री अरविंद उनसे कहते हैं वेयर इज योर सूप, तो लेके जाते प्रभु ये मेरा स्वीप, गो गिव इट टू एवरीवन, सबको जाके दो। तो कहते कैसे दूं, आप जब तक चखेंगे नहीं तो प्रसाद कैसे बनेगा। तो कहते श्री अरविंद डिप्स हिज फिंगर एंड टेस्ट इट, और उनको स्पष्ट हो जाता है कि ये पुस्तक मुझे लिखनी है, और अब मतलब मार श्री अरविंद एक है। अब उन्होंने उस इटर्नल साइलेंस को, हिमालयन साइलेंस को ले लिया था कि सदा सदा के लिए ना है। तो माँ जानती थी वो तो कालखंड में खेल रही हैं, यस द टाइम इज कम। वो पुस्तक हिंदी में जो श्री अरविंद की जीवन है, अद्भुत पुस्तक है हिंदी भाषियों के लिए, वन पर्सन श्री अरविंद, एक श्री अरविंद के नाम से संक्षिप्त एक जीवन परिचय या एक परिचय, वो एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं, छोटे नारायण शर्मा की एक ही किताब है श्री अरविंद के ऊपर। तो जब माता जी ये देख लेती हैं, कहती है नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड कमिंग, उनके हस्बैंड आके कहते हैं हमें वापस पांडिचेरी जाना चाहिए, और टिकट वगैरह सब खरीद लिए हैं। तो कुछ दिनों में वो सेल करती हैं और पांडिचेरी आती हैं। अब इसमें टैंजिबल साइन, सारी वो शक्तियां जिन्होंने दूर रखने की चेष्टा की, फर्स्ट वर्ल्ड वार, एडवर्स फोर्सेस, नर्वस पेन्स एडवर्स फोर्सेस, स्पेनिश फ्लू एडवर्स फोर्सेस, वो जो असुरा ऑफ फॉल्सहुड एडवर्स फोर्सेस, इन सब के बावजूद उन दोनों का फिर से मिलन होता है। इसका कंटेक्स्ट ये है, इसके दूरगामी परिणाम है। जब श्री राम ने रावण को मारा, इसका मतलब ये नहीं कि सारे चोर चकारी बंद हो गई, अगले दिन से राम राज आ गया, ऐसा नहीं है कि आगे से कोई रावण पैदा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। वो एक विजय होती है, वो निश्चितता लाती है। यदि ये विजय एक बार हो गई है तो ये हमेशा हो सकती है, ये हमेशा दोहराई जा सकती है, नहीं कि उपद्रव नहीं करेगा। तो चूंकि ये एक बार विजय हो गई है, डेसिसिव विक्ट्री, मतलब अब इस संसार में जो भी खुलेंगे, ऑफ कोर्स कंडीशंस अप्लाई ऑलवेज, उन ये विजय कंडीशंस अर्थ पे हमेशा होती हैं, भगवान नियम को ओवरराइड नहीं करते हैं, बदलते हैं, और बदलने की प्रोसेस स्लो है। ये बता दूं कि कुछ लोग कि भाई सब कैसे बदला, तो मैं एग्जांपल देता हूं कि एक डॉक्टर ने दवाई लिख दी, एक दवाई खोजी, श्री अरविंद उस वैज्ञानिक की तरह हैं जिन्होंने एक आविष्कार किया एक दवाई का, जिससे आप सदा सदा के लिए आप निरोग हो जाएंगे। तो उन्होंने कर दिया, दे दिया, तो उनका तो काम हो गया पूरा। उस दवाई का मास लेवल पे अप्लाई करना माताजी ने कर दिया, सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन, दोनों का काम हो गया। उनको तो जरूरत नहीं है, वो तो आए हैं मनुष्य के लिए, चले गए, तो वो तो सक्सीड हो गया उनका मिशन। लेकिन दवाई आप खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, जब आपको विश्वास होगा। पुरानी फार्मा लॉबीज वेट कर रही, नहीं 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 इसमें कोई काम नहीं होगा, ये तो आप ऐसे ही कह रहे हो, हमारी एलोपैथी की दवाई अल्टीमेट है, आयुर्वेद में बाय द वे, हाँ वो है, हम ही हैं बस, पैसे हैं हमारे पास, यही कह रही ना फार्मा लॉबीज, तो पुराने जितने मत मतांतर, अरे ये कैसे संभव है, भगवान तो मिरेकल कर देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, ये क्या है। तो कंडीशन अप्लाई, फिर जब आप खरीदने जाओगे तो बहुत बड़ा प्राइस है। क्या प्राइस है? शीश कटाए भूई धरे तब बैठे घर माए। आप पहले अपने ईगो को दे दीजिए हमको, अब पैसे तो दे दें हमको, अगर कोई कोर्स करा दे, नहीं है कोर्स, श्री अरविंद योग का कोई पैसे देके कराए जाने वाला रेडीमेड कोर्स नहीं है, कृपया इस चीज को हम समझ लें, जितनी जल्दी उतना अच्छा है। इसका दाम है ईगो और डिजायर, ये तो बहुत कठिन है, तो प्राइज नहीं दे सकते। चलो आप तैयार हो गए, क्योंकि वो किस्तों में लिया जाता है इमीडिएटली, धीरे आप बस गच दीजिए यस, तो भगवान ले लेंगे, धीरे धीरे करके ले ले। दवाई इमीडिएटली शुरू हो जाएगी। अब दवाई अगर आप तैयार नहीं हैं तो उसके परिणाम, हर दवाई के दुष्परिणाम हो सकते हैं, अगर आप रेडी नहीं हैं। उस बड़ी प्रचंड दवाई है, दवाई क्या है? सुपरामेंटल कॉन्शियसनेस। तो इसलिए शेरविन ने कहा भाई तैयार हो तुम, रेडी हो कि नहीं, इसकी भी माताजी के थ्रू टर्न टू द मदर, शी विल डिसाइड। तो ये काम सारा हो चुका है और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन उस समय जो एक निश्चितता है विजय की, वही निश्चितता स्वयं को रिपीट करती चली जाएगी आने वाले कालखंड में, और एडवर्स फोर्सेस वीक होती चली जाएंगी, और वो देख रहे हैं हम सब, जब एक दिन उनका औचित्य समाप्त हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड है इस प्रार्थना का। लेकिन हम लोग वो पढ़ें भाग जहां माँ पुकार रही है सुप्रीम को, सारे प्रयास उन्होंने कर लिए हैं लेकिन विफल हो रहे हैं। देखिए कैसे पुरानी कथा है, श्री राम सारे प्रयास, अंत में अब समुद्र आ गया बीच में, कैसे लाए, सब पता चल गया माता सीता कहां है, लुक एट द होल स्टोरी। ये प्रार्थना लिखी है ओ वाके, अब मुझे क्षमा करें जापनीज प्रोनंसिएशन मुझे नहीं आता है, स्पेलिंग है ओ आई डब्ल्यू ए के ई, लेकिन उसके ऊपर हलंत लगा, हम लोग जो हिंदी में हलंत बोलते हैं, ऑक्सलॉन फ्रेंच में बोलते हैं, क्योंकि माने फ्रेंच प्रोनंसिएशन किया होगा। सेप्टेम्बर 3, 1919 ये अंतिम प्रार्थना इसमें है जो जापान में है, उसके बाद पांडिचेरी June 22, 1920 को वो फिर से रिज्यूम करती है। सिंस द मैन रिफ्यूज द मील आई हैड प्रिपेयर्ड विथ सो मच लव एंड केयर आई इनवोक द गॉड टू टेक इट। अब देखिए इसमें वेदना, भगवान की वेदना, माता जी ने हम सब के लिए थाल में भोजन परोस दिया है, बना दिया है, परोस दिया है। मनुष्य क्या कहता है, सच में इससे हमको फायदा होगा, गारंटी है, क्या दाम पड़ेगा? नहीं, ये तो बड़ा महंगा है। लोग सावित्री खरीदने के पहले दाम पूछते हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। एक समय 300 रुपए में भी थोड़ा बढ़ गया है 400, मतलब ये ऐसी किताब है जो संसार में ना भूतो ना भविष्य, तो आपको लगे ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग पूछते हैं अरे बड़ी महंगी है, कोई सस्ता वाला कुछ किताब है? इजी टू डू स्टेप्स तो सावित्री कैसे पढ़े भी नहीं है। अब 300-400 रुपए मनुष्य एक पता नहीं होटल में जाके कहां कहां जाके किन बेवकूफियों में उड़ा देता है, आप कल्पना कीजिए। तो इस हद तक उन्होंने, ये उनका कृपा प्रसाद है, सब कुछ बना के ले आया, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है। एक्चुअली माँ यहां सूप सेरेमनी होती थी 1920 के बाद, जिसमें वो अपनी चेतना को डाल देती थी एक्चुअली फिजिकल सब्सटेंस में, क्योंकि जब लोग लेंगे मील क्या होता है, अन्नम, फिजिकल कॉन्शियसनेस के लिए भी वही शब्द है जो भोजन के लिए है, अन्नम ब्रह्मेति। तो मील क्या हुआ, वह जो मनुष्य के शरीर को ले जाएगा रूपांतरण की ओर। तो माँ वो सूप के द्वारा प्रयास करती थी, उसमें भी किसी डॉक्टर ने, ये तो अनहाइजीनिक है, श्री अरविंद ने कहा ब्रूट्स, बंद करवा दिया अंडर हिज ब्रेथ, क्योंकि वो आप सोचिए शरीर को काट के डाल रही है। कई सारे मिथ सब पता चलती जिनको मिथ कह देते, जैसे क्राइस्ट कहते हैं एक जगह, उनका लास्ट सफर है, तो उसमें जब टोस्ट देते हैं तो वो कहते हैं वाइन को जब उठाते दिस इज माई ब्लड, और क्रिश्चियन प्रीस्ट इसको करते हैं सेक्रामेंट, लेकिन उनको मतलब नहीं पता है। एक बार मेरा डिस्कशन हो चुका है, मैंने कहा आप लोगों को पता नहीं है ये क्या है, आप मैकेनिकली इस चीज को कर रहे हो, दिस इज अ सीक्रेट सेरेमनी। हमारे यहाँ प्रसाद की परंपरा है तो हम लोग इस चीज को समझते हैं, भगवान को भोग लगाना तो वो अपने सूक्ष्म सत्ता का कुछ तत्व डाल देते हैं। तो माँ तो फिजिकल बॉडी कॉन्शियसनेस, लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है, उसको डाउट है, वो तो ये कह रहा है कि भाई पता नहीं स्वादिष्ट कैसा है, हमको तो ऐसा चाहिए, हमारे पसंद का नहीं है, हमको तो वो वाली सब्जी चाहिए। तो सिंस मैन रिफ्यूज्ड, माँ ने भगवान का आह्वान किया, माई गॉड दाउ हैस्ट एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। आप देखिए क्या वेदना के साथ प्रेम मिला हुआ है, आप आगे प्रभु, विजन ऑफ द सुप्रीम, ये उसी अनुभव को माने प्रार्थना के रूप में लिखा है, माई गॉड दाउ हैस्ट एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन, दाउ हैस्ट कम टू सिट एट माई टेबल। माँ कहती है अनुभव कहां हुआ था, ये भी बताती है, जापान में एक पर्टिकुलर घर में भगवान आते हैं सुप्रीम और उनके साथ बैठ जाते हैं। एंड इन एक्सचेंज फॉर माई पुअर एंड अम्बल ऑफरिंग दाउ हैस्ट ग्रांटेड टू मी द लास्ट लिबरेशन। अब देखिए हम लोग सुनते हैं ना, राम जी शबरी चक्कर के प्रतीक्षा कर रही हैं, एक दिन भगवान आ जाते हैं। अब ये जो खाना चक्के देना, ये अपनी चेतना का, भौतिक चेतना का एक हिस्सा भगवान को देना, हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, लेकिन हमारे अकल ट्रेडिशन में हर किसी का झूठा नहीं खाते हैं, झूठा नहीं खाना चाहिए, क्यों है ये? इस कारण से है क्योंकि आप भौतिक चेतना, अब लेकिन वही हम कहते हैं प्रसाद रूप में हम ग्रहण करते हैं और संतों का खाते हैं, कहते हैं संतों का अगर आप खा लें तो आपके कर्म कटते हैं, ये सब हमारे यहां ये चीज है। अब ये क्यों है, क्योंकि आप भौतिक चेतना का एक टच उसमें जाता है, जिसके अंदर भौतिक चेतना जड़ चेतना में ना जाने क्या क्या चीजें धसी हुई हैं, अंधकार का गढ़ है वो। अगर भागवत पुराण पढ़ो या गरुड़ उसको पढ़ के लगता है ये भगवान, शरीर मांस मज्जा वो पढ़ के तो लगता है शरीर से ग्रहण ही हो जाए किसी को, दुर्गंध से भरा हुआ लेकिन इस शरीर में भगवान विराजते हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए, हमारा ये पता नहीं है, लेकिन अब ये एस्पेक्ट है इसका। तो कहते हैं भगवान आते हैं और पुअर एंड अम्बिल ऑफरिंग उन्होंने जो बनाया है, क्योंकि अगर भगवान स्वीकार कर लेंगे तो ये सृष्टि स्वीकार करेगी, क्योंकि उसके कण कण में भगवान विद्यमान है। तो मनुष्य नहीं स्वीकार कर रहा है, वो जानता भी नहीं है, जगत जननी है, लीला कर रही, जैसे राम जी को नहीं समझ पा रहे थे लोग, तो फिर स्वयं भगवान आते हैं स्वीकार करते हैं। लास्ट लिबरेशन, किस चीज का लिबरेशन है अभी बताएंगे. माँ तो हर लेवल पर मुक्त, बॉर्न फ्री है, तो फिर किस चीज का लिबरेशन है. माई हार्ट इवन दिस मॉर्निंग सो हैवी विद एंग्विश एंड केयर. किस चीज की पीड़ा है भगवान के हृदय में, वो तो सबको पीड़ा से मुक्त करते हैं, उनको कैसी पीड़ा होगी. राम जी का वियोग ये कैसे है, माता सती को भी हो जाता है, अगेन वाल्मीकि रामायण में नहीं है, रामचरित मानस में है, पर बड़ा सुंदर प्रकरण है. माता सती कहती है आप कहते हो इनको पारब्रह्म, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में वो स्टोरी इस तरह से नरेटेड नहीं है. यहाँ तो सीधा भक्तिभाव में है ना, तो शिव पार्वती के संवाद से ही प्रारंभ होती है. तो सती माता कहती है कि ये सच्चिदानंद ब्रह्म सबको ढूंढ रहे, मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, और टेस्ट करने के लिए चले जाते हैं. जब माता सीता का रूप बना के आती हैं सती और श्री राम देखती कहते हैं अरे आप यहां क्यों हो माता, शिव भी वैसे ही वियोग में हो रहे होंगे. अब ये वियोग क्या है, ये वियोग शिव का विलाप क्या है जो सती को लेकर के घूम रहे हैं, उस संसार के लिए उनका विलाप है जिसने भगवान को अस्वीकार कर दिया. ये है मां की पीड़ा. जैसे फिजिकल मदर बच्चे के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जिसमें उसने प्रेम भी डाला है, बहुत केयर लेके बनाया है, और बच्चा आके कहे मामा मुझे मैगी नूडल खाना है, मैं तो चला मेरी पार्टी है, माँ क्या कहती बेटा थोड़ा चख के तो चला जा. हम लोग मतलब मनुष्य का एक जनरल स्टेट जो है. तो कहती माई हार्ट Even this morning so heavy with anguish and care. कैसे मैं इसमें सब कुछ मैंने डाल दिया है, तैयार कर दिया उसके लिए भौतिक चेतना में. तो वो जो पीड़ा भगवान की पीड़ा है वो पीड़ा बहुत भिन्न है. वो पीड़ा है मनुष्य की पीड़ा को, ना केवल मनुष्य की पीड़ा, उसका हल ढूंढ लिया है लेकिन मनुष्य अस्वीकार कर रहा. आप देखिए इसकी पीड़ा को सोचिए कैसी पीड़ा होगी. Anguish and care. माई हेड सर चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. बचपन से ही उनको था कि पूरे विश्व का भार उनके सिर पर, सर चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. आर डिलीवर्ड ऑफ देयर बर्डन. भगवान ने आके कहा ऐसे नहीं होगा, ये मिल करके होगा. तभी माँ कहती है देन आई न्यू इट विल नॉट बी लाइक दिस. ये नहीं कि इट विल नॉट बी दिस टाइम, इट विल नॉट बी लाइक दिस. तभी वो जब आती हैं श्री अरविंद से, हालांकि पहली बार मिलकर उन्होंने ये प्रश्न किया था, पर जब दोबारा आती हैं तो फिर से कहती लेकिन ये निश्चित था कि संसार, उन्होंने माने श्री अरविंद को कहा कि बट दिस वर्ल्ड इज नॉट रेडी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था वो तो जगन माता है, तत्क्षण कर सकती हैं रूपांतरण, सब कुछ उन्हीं के पास है. श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि मेरा ये मानना है कि यदि हम पूरी तरह अमूल चूल सिंसियर हो जाए, इंटेग्रली सिंसियर माने बॉडी के एक एक सेल तक, तो सीमा के अंदर वो शक्ति है कि उनको तत्क्षण रूपांतरित कर सकती है. श्री अरविंद कहते हैं इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ. ये नहीं कि ये मैजिक नहीं होता है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ, पर इंटेग्रल सिंसेरिटी ये कंडीशन है, तो कंडीशन से अप्लाई. तो माँ जब आती हैं तो उन्होंने देख लिया था. वो श्री अरविंद से कहती हैं कि मनुष्य तैयार नहीं है. तो श्री अरविंद कहते हैं ऐसे नहीं मनुष्य तैयार होगा. मनुष्य के तैयार होने की अगर हमको प्रतीक्षा करनी है तो हमको सदैव प्रतीक्षा करते रहना होगा. हमें मनुष्य को तैयार करना होगा. अब देखिए लोग आना शुरू होते हैं, मां नए सिरे से प्रारंभ करती हैं, फिर एक देव जगत का अवतरण कर देती है. श्री अरविंद फिर कहते हैं ऐसे भी नहीं, नो मैजिक मिरेकल, क्योंकि जड़ें जो गहराई है वहां वही पॉइजन है. उन जड़ों को खोद के वहां पर अप्लाई करनी है मेडिसिन. दीमक लग जाती है ना घर में, तो दो प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं. एक होता है वो क्विक वाला ट्रीटमेंट, इधर उधर फुस फुस करके आपको बड़ा अच्छा लगता है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट हो गया. लेकिन जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है, आपको पता है कैसे ट्रीटमेंट होता है, वो घरों के अंदर हर 2 इंच पर ड्रिलिंग करते हैं और उसके बाद भी बाहर भी, और कहते हैं एक बिल्डिंग में करने से नहीं होगा, एक घर में, आपकी कॉलोनी में जितनी बिल्डिंग है उसमें करना होगा. तो उनसे पूछो ये क्यों कर रहे हो भाई, हमको तो अपनी बिल्डिंग में. सर फिर आ जाएंगे, क्यों आ जाएंगे, ये पूरे जो वाइट एंट होती है दीमक, इसकी एक मदर एंट होती है, इकलौती होती है वो। इसलिए शेरविंद का एक पूरा कैंटो है मदर ऑफ फॉल्सहुड एंड इविल, इकलौती फीमेल होती है। और ये सारे दीमक ये लकड़ी उड़ी खा के उसके पास जाते हैं, उसको देते हैं खाना, वो खाती है, पचाती है, फिर उगलती है, उसको खा के जीवित रहते हैं। ये मतलब देखो तो फॉल्सहुड वर्ल्ड का एकदम साक्षात उदाहरण है दीमक। कहा रहते टर्माइट सिटीज अंडर द सन, ये शेरविंद डिस्क्राइब करते हैं वर्ल्ड ऑफ फॉल्सहुड में, लाइक टर्माइट सिटी हिडन फ्रॉम द सन। तो उसी प्रकार से शेरविंद के पास तो नहीं, जड़ों को, जड़ तक जाके ये मेडिसिन अप्लाई करनी है। इनकॉन्शियंट जब तक जैसा है, सब कॉन्शियंट नहीं बदलता, तो बदल तो हम देंगे, बाहर से बड़ा अच्छा लगेगा, सारे हो जाएंगे स्वामी ये स्वामी वो सारे स्वामी, कुछ दिनों बाद वही शुरू हो जाएगा मूवमेंट, आई डोंट वॉन्ट एन अदर रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। यही हुआ है रिलीजन्स के साथ, प्रारंभ बड़ा जोरदार होता है, धमाकेदार धीरे 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 जैसे दिवाली के पटाखे फुस होने लगते हैं वैसे उनका हश्र होता है। ट्रूथ रिसीड्स फ्रॉम द सीक्रेसी ऑफ इट्स साइलेंस, तो कहते हैं वो नहीं करना है। तो वो माँ उससे मुक्त, वो पहले ही आते हैं, कहते हैं वो ले लेते हैं ये सारी जिम्मेदारी, कहते हैं यू डोंट वरी। और ये चीज मूर्त रूप होती है आने के बाद। माँ हर बार वो कहती हैं 30 साल किस ब्लिस में मैं रही, 1920 से 1950, 50 के बाद फिर उनको लेना पड़ा दोनों बर्डन। कहती है मुझे कुछ नहीं करना होता था, मैं आके बस जितनी भी चीजें थी श्री अरविंद के सामने आके कहती थी माई लॉर्ड, और वो सब खत्म हो जाती थी, बस इतना माई लॉर्ड। तो यहां उसका वर्णन है, उनके सिर से सारी जिम्मेदारी, डिलीवर्ड ऑफ देयर बर्डन, नाउ आर दे लाइट एंड जॉयफुल एज माई इनर बींग हैज बीन फॉर ए लॉन्ग टाइम पास्ट। अंदर में तो उन्होंने सब प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाहरी चेतना जिसमें वो काम कर रही थी, जिसमें उतरी थी नाले में, गंदगी में, कीचड़ में साफ करने, अब वहां भी उनको सब जगह जगमग जगमग ज्योत जले। माई बॉडी स्माइल्स टू दी विद हैप्पीनेस एज बिफोर माई सोल स्माइल टू दी। ये शरीर जो था ना भगवान का शरीर, क्या क्या वो नहीं लेते हैं उसके ऊपर, इसलिए शरीर धारण करने की मिस्ट्री वो कभी और हम लोग करेंगे। तो सारा अपने शरीर पे जो भौतिक जगत की समस्याएं शरीर पे ले रही थी, इनर बीइंग फ्री हो गया आपका, इससे क्या होता है। कुछ लोगों और लोगों को आप इनर बीइंग को फ्री कर सकते हो, लेकिन शरीर जब धारण करेगा तो शरीर में तो वही जो हम लोग पढ़ते आए हैं। तो मां शरीर के साथ तादात्म करके फिजिकल बॉडी को उन्होंने, और फिजिकल बॉडी वही अन्नम ब्रह्मेति, इसीलिए बॉडी की बात हो रही है, फिजिकल बॉडी के अंदर उन्होंने वो सब तैयार कर दिया है। और तभी तो माँ का जो फिजिकल टच है, एक जगह शेरविन कहते हैं 1000 सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस कैनॉट रिप्लेस 1 फिजिकल टच ऑफ द डिवाइन मदर। इवन अगर आपको सूक्ष्म जगत में माँ का स्पर्श, आप उसको कभी नहीं भूल सकते हो, और वो तो माँ की कृपा है, इसीलिए उन्होंने अपने स्पर्श की हुई बहुत सारी चीजें इस संसार में गिफ्ट ऑफ ग्रेस के रूप में दी गई, क्योंकि उन सब में माँ का स्पर्श है, अद्भुत है वो स्पर्श। जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई, ये स्पर्श ही तो है ना, गौतम नारी अहिल्या तारी, स्पर्श जो होता है फिजिकल कॉन्शियसनेस का। लेकिन मनुष्य तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक ही प्रकार का स्पर्श जानता है। तो वो माई बॉडी स्माइल्स टू दी विद हैप्पीनेस एज बिफोर माई सोल स्माइल टू दी। सारे शरीर से जो उन्होंने ले रखा था अपने अंदर, वो सब कुछ एक झटके में ले लेते हैं, और फिर मार्ग दिखाते हैं। एंड श्योरली हियर आफ्टर दाउ विल्ट विदड्रॉ नो मोर फ्रॉम मी दिस जॉय। कौन सा जॉय? शरीर का। अब यहां शरीर की बात हो रही है। माँ का सारा योग जो 1956 के बाद, खासकर 1960 के बाद, 62 में तो उन्होंने विड्रॉ कर गई थी, सारे एक्सपीरियंसेस, अगर आप बिना माँ के कलेक्टेड वर्क्स उनकी पूरे उसको पढ़े बिना पढ़ेंगे तो लगता है अरे माँ सच्चिदानंद एक्सपीरियंस कर रही है, ये अभी क्यों एक्सपीरियंस कर रही है, शरीर एक्सपीरियंस कर रहा है, ये बार बार माँ स्मरण कराती है। फिजिकल कॉन्शियसनेस ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है किसी मनुष्य की। आप शरीर से विड्रॉ करके मन की किसी पर्वत पर चढ़ के अनुभव करते हो, या चेतना की गहराई में उतर कर अनुभव करते हो, समाधिष्ठ होकर अनुभव करते हैं कुछ लोगों ने इधर उधर, ये नहीं कि बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है वो भी, लेकिन शरीर की चेतना चखले भगवान को तो फिर तो वो आज नहीं तो कल, वो तो रुकेगी नहीं। माने और बहुत कुछ किया है इस शरीर के रूपांतरण की, जो कभी और हम लोग बात करेंगे, और वो कैसे वो 58 में सुप्रामेंटल चिप शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस करती हैं। तो उनको ये देख लिया था उन्होंने, इस तरह से नहीं होगा जैसे मैं कर रही हूँ, पहले सुपर माइंड आएगा, इनकॉन्शियंट में जाके काम करेगा, रेडीनेस होगी, तब ये चीज हो सकती है। इसीलिए सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात, क्योंकि मनुष्य के अंदर सत्य का आधार नहीं है। ओ माय गॉड फॉर दिस टाइम आई थिंक द लेसन हैज बीन सफिशिएंट, यही कर रही थी मां। ऐसा नहीं कि सीख गई हम लोग कह सकते ना, आके यहां पे उन्होंने फिर शुरू कर दिया सबका, सबकी प्रॉब्लम लेना, मरणासन्न अवस्था में चली गई। और श्री अरविंद कहते हैं क्योंकि माँ ने एक बार प्रार्थना की थी कि दुनिया भर की जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी परिश्रम मेरे अंदर आ जाएं प्रभु, और श्री अरविंद कहते हैं एंड सो फार द डिवाइन हैज ग्रांटेड इट टू हर। सावित्री में इसका बहुत मार्मिक वर्णन है बुक 11 में, थोड़ी बहुत इसकी बात हुई है, दाउ शेल्ट नॉट श्रिंक फ्रॉम एनी ब्रदर सोल। मेरे जो डेंजर्स हैं, टेरिबल मास्क्स, उनसे भी तुमको दूर नहीं जा सकती हो, वहां भी नॉइज में, युद्ध में, सोर्ड्स की क्लैश में तुमको मेरा दिव्य संगीत सुनना है, तुमको अलाउड ही नहीं है। जो तुम्हें लग रहा है कि संसार में सबसे अधिक भगवत विरोधी एनिमीज हैं, उनको भी तुमको गले लगाना है, ये माता जी का मिशन है। तो वो आके यही करने लगी जब तक श्री अरविंद, और उसी के फलस्वरूप वो देव चेतना उतार लाई। मनुष्य वो चाहती थी हम नहीं कुछ करें, वो कर देंगी सब कुछ, सर्व सक्षम है। लेकिन जब आप किसी को फ्री में कुछ दे देते हैं, ये लेसन है जो डिवाइन मदर सीखती है, कि फ्री वाला जो गॉड होता है ना, वो प्रॉब्लमेटिक है, आप उसको वैल्यू नहीं करते हो ना, उसको लेने के लिए तैयार हो, थोड़ी तो हमको एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए श्रीमद कहते हैं यू रिलाई ऑन ग्रेस बट यू हैव टू डू सम सेल्फ इनेबलिंग साधना, सम एफर्ट। लेसन हैज बीन लर्नड इस बार, क्या लेसन है, आई हैव माउंटेड द कैलवरी ऑफ सक्सेसिव डिसिल्यूजनमेंट्स हाई एनफ टू अटेन टू द रिसरेक्शन। अब ये क्या है, ये क्रिश्चियन वो है, लीजेंड का रूप है कैलवरी, वह जगह। अगर इसका शाब्दिक मीनिंग देखें तो अलग है, तो शाब्दिक मीनिंग होती है कैलवरी, जो घोड़े के ऊपर आप वो घुड़सवार डालते थे, पर कैलवरी है वो जगह जहां पे जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था, जेरूसलम सिटी की वॉल के बाहर है जहां पे, तो क्रूसिफिक्शन। और क्रूसिफिक्शन में जाने के पहले जो सारे रेजिस्टेंस क्राइस्ट के जीवन में, तो वो डिसिल्यूशनमेंट जो होता है, और अल्टीमेटली वो क्रूसीफाइड, श्री अरविंद ने इसको सावित्री में बड़े विस्तार में बताया है कि क्रूसीफाइड होके ही चलो अगर संसार शुद्ध हो जाए। पर श्री अरविंद कहते हैं क्राइस्ट न्यू द फेलियर ऑफ हिज मिशन, द क्रॉस रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ फेलियर। वो कर दिया ना मनुष्यों ने, वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, और हम लोगों को सचेत होना चाहिए कि हम ऐसी चीज ना करें। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा कि भाई आपको क्या लगता है संसार में क्रिश्चियन कितने हो गए, उन्होंने कहा एक था जिसको क्रूसीफाई कर दिया, एक ही था, इकलौता क्रिश्चियन क्राइस्ट। तो ह्यूमेनाइज हुआ मनुष्य, लेकिन क्रूसीफाइड बॉडी माँ। अब देखिए इसमें लेसन ये कैलवरी की बात क्यों कर रही है, कैलवरी ऑफ सक्सेसिव डिसिल्यूशनमेंट्स, ऐसे नहीं होगा, मैं यदि सूली पर भी चढ़ जाऊं तो ये नहीं होगा, माँ तैयार हैं लेकिन ये नहीं होगा। और आगे क्या कहती है, हाई एनफ टू अटेन टू द रिसरेक्शन, रिसरेक्शन इज द न्यू बर्थ, नई चेतना का आना। कहते मेरे सूली पे चढ़ने से नई चेतना नहीं आएगी, ये उन्होंने सीख लिया डिसिल्यूशनमेंट। इसी कारण बाद में माँ एक मैसेज देती हैं, भूल रहा हूं किस, एक शायद 25 दिसंबर का मैसेज है 60s का, माँ कहती हैं, इट इज नॉट ए क्रूसीफाइड बॉडी बट ए ग्लोरीफाइड बॉडी दैट कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. क्रूसीफाइड आप ले लोगे, मनुष्य फिर अपने रास्ते चला जाएगा. आपने उनके पाप धो दिए, लेकिन भाई वो उस समय के पाप धो दिए आपने, मनुष्य नए पाप करेगा क्योंकि वृत्ति उसकी वही है. तो ग्लोरीफाइड बॉडी जब एक आएगा आपके लिए, एक आगे का आदर्श है, वह परिवर्तित करेगा. क्योंकि जब मनुष्य के लिए एक आगे का आदर्श रखा जाएगा जिस ओर वो बढ़ सके, तो उसके अंदर वो रूपांतरण, उसकी ललक और फिर एस्पिरेशन इत्यादि. तो ये जो माँ ने लिखा था उसका ये अनुभव यहां पर आ रहा है कि आई हैव माउंटेड द कैलवरी ऑफ सक्सेसिव डिसिल्यूशनमेंट्स. कि ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, अगर मैं स्वयं को, मृत्यु को भी मैं जाने को तैयार हूं मनुष्यों को के लिए, लेकिन यदि मैं चली भी जाऊं तो वैसे नहीं होगा. हाई एनफ टू अटेन टू द रिसरेक्शन. अब मेरे अंदर एक नई चेतना ने जन्म ले लिया है कि कैसे होने वाला है. ये शरीर त्याग करके नहीं होगा, ये शरीर के रूपांतरण के द्वारा होगा. नथिंग रिमेन्स ऑफ द पास्ट बट ए पोटेंट लव. अब वो सारा जो उनका एफर्ट था चला गया, डिसिल्यूजनमेंट हो गया, परम वैराग्य होगा. लेकिन उस परम वैराग्य से क्या निकल के आ रहा है, देखिए. ये नहीं कि अरे कोई फायदा नहीं, मनुष्य वैसे ही है, नहीं बदलेगा. हम लोग कितनी जल्दी गिव अप कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर. भगवान की बस एक ही बात बहुत अच्छी है, बहुत कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात जिससे हमेशा आशा रहती, भगवान गिव अप नहीं करते. माँ एक जगह कहती है, यदि भगवान एक क्षण के लिए मनुष्य की तरह सोचे तो पूरी सृष्टि कोलैप्स हो जाएगी. अरे ये मनुष्य छोड़ो, इसको गिव अप नहीं करते. तो उसका क्या बचता है, उनके सारे एफर्ट जो फेल होता है उस समय, 1920 की बात है. पोटेंट लव क्या मतलब है इसका, नहीं, मुझे इस प्रेम को पावर के साथ जोड़ना है. पोटेंट लव, व्हाट रिमेन्स इज पोटेंट लव विच गिव्स मी द प्योर हार्ट ऑफ ए चाइल्ड. उसका लक्षण भी बता रही है, एंड द लाइटनेस इज फ्रीडम ऑफ थॉट ऑफ ए गॉड. जब वो शुद्ध, केवल शुद्ध नहीं, पावरफुल प्रेम अंदर में आता है, तो प्रेम क्या करता है, सब कुछ उस प्रेम के आगे झुक जाते हैं. हमारे महाभारत की कहानी है कि जब नारायणी अस्त्र अश्वत्थामा साधते हैं. अब नारायणी अस्त्र किसका है, नारायण का अस्त्र है. उससे आप लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपको एक कंडीशन है जिसमें वो आपको कुछ नहीं करेगा, आप उसके सामने झुक जाइए, नति हो जाइए. हमारे भीमसेन तो समझते नहीं, भीम भैया अर्जुन को कहते हैं, श्री कृष्ण उद्घोष कर देते हैं, नारायणी अस्त्र है, सब लोग झुक जाओ, झुक जाओ. भीम, मैं तो लड़ूंगा. उस समय महाभारत में डिस्क्रिप्शन है, वो प्रयास कर रहे हैं लड़ने का, और वो क्षीण होते जा रहे हैं. श्री कृष्ण देखते हैं ये क्षीण होते जा रहे हैं, तो ये डाई, तो वो जाते हैं और जबरदस्ती श्री कृष्ण उनका सिर पकड़ते हैं भीमसेन का, और झुका देते हैं, और स्वयं भी झुक जाते हैं. तब वो अस्त्र जाके चला जाता है. ये कितना सुंदर लेसन है, नारायणी अस्त्र के सामने आप लड़ नहीं सकते हैं, आपको नति होना है. तो जब आप नति हो जाते हो, पूरे विनम्र, कौन सबसे विनम्र होता है, वो जिसके पास कुछ नहीं होता, वो जानता है मेरे पास मेरा कुछ नहीं है. बच्चा बड़ा विनम्र होता है, एडोलेसेंस में जाके वो थोड़ा एरोगेंट होता है, और जब उसको 25-30 का लग जाता है, डैड मॉम आई नो एवरीथिंग, आपने तो ऐसे ही मूर्ख हो आप. फिर जब 60 का होता है, कहता है डैड यू आर राइट. मैं नहीं समझा. साधना की भी यही स्टेजेस होती है. अंत में विनम्र होना ही है, पहले अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो इतनी धोबी पछाड़ होती है, उठा उठा के कपड़े को भगवान पटक पटक के साफ करते हैं, आप अंत में कहते भगवान तो सिगरेट हो जी. मतलब यू हैव नो चॉइस, नो चॉइस. तो बच्चे की क्या होती है, बच्चा साथ स्वाभाविक, मेरे माँ पिता सब देख लेंगे. तो जब शुद्ध पावरफुल लव की पहचान होती है, वो प्रेम है, वो जानता है कि ये तो मेरे साथ मेरी माँ का प्रेम है, माँ के कंटेक्स्ट में सुप्रीम. तो उस समय आप बच्चे बालवत हो जाते हो, किस चीज का भय है, किस चीज की चिंता है, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, ये हो वो हो या कुछ ना हो, आपको पता है जगत जननी माँ है, वो करेंगी ना सब। तो माँ कहती क्या होता है उस समय, प्योर हार्ट ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे के हृदय में कोई भी पास्ट नहीं है, कोई पूर्व धारणाएं नहीं है, पेरेंट्स डालते हैं, करप्ट करते हैं उसकी चेतना को। पहले करप्ट करने वाले पेरेंट्स होते हैं, अरे बड़ा होके तुझे ये करना है, अरे बड़ा होके वो करना है। बच्चा गलती से बोल दे मुझे भगवान बनना है, डॉक्टर के पास इलाज ले जाओ, माँ मुझे श्री अरविंद माता जी में इंटरेस्ट है, क्या कहाँ चला गया। श्री अरविंद के ऊपर केस किया था किसी ने, आओ फाइल में है, 17 साल का एक बच्चा भाग के आ गया, तो माता पिता ने केस कर दिया था कि श्री अरविंद ने कुछ जादू किया है इसलिए भाग करके आ गया। आप सोचिए, तो अब भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने। तो हार्ट ऑफ ए चाइल्ड के अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है, कोई पूर्व धारणा नहीं, वो कभी नहीं सोचता ये बीमारी हो जाएगी, कट गया, टेटनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। बच्चे के अंदर मृत्यु का भाव नहीं होता है। मैंने तो बच्चों को देखा 8-8 साल के बच्चे ब्लड कैंसर, डॉक्टर लोग सीरियस है, बच्चा खेल रहा है। तो हमने खेलते खेलते वो बच्चे से, क्योंकि हमको पता था डायग्नोसिस, हमको पता लगा कि पता नहीं बच्चे को पता है कि नहीं, क्यूरियोसिटी में हम 2-4 लोगों ने पूछ लिया, FMC की बात है, कि अच्छा तुम क्यों, बड़े डायरेक्टली पूछा, हाँ मुझे ब्लड कैंसर है। हम सन्न रह गए, मुस्कान है, खेल रहा है, हाँ मुझे पता है मुझे ब्लड कैंसर है। फिर आगे हमारी हिम्मत नहीं हुई, इसका क्या मतलब है, पता है, हमने कहा नहीं भाई ये ब्लेसफुल। तो बच्चे के अंदर वो सहज स्वाभाविक फेथ होता है जीवन में, हार्ट ऑफ ए चाइल्ड एंड द लाइटनेस एंड फ्रीडम ऑफ थॉट ऑफ ए गॉड, वो विचार जो कभी भी धरती के विचारों से मलिन नहीं होता है, थॉट ऑफ ए गॉड। धरती पर अगर थॉट ऑफ गॉड उतरेगा ना, तो उसके अंदर इफ्स एंड बट शुरू होंगे, जो चेतना में ऊपर उठ जाते हैं, जिनके अंदर वो देव तुल्य विचार आने लगते हैं, कभी ऐसे नहीं सोचते मगर दुनियादारी तो अलग चीज है, रोटी कपड़ा मकान का क्या होगा। वो जब आप मर्त लोक में आएंगे तो ये विचार, वही जब नारद का थॉट ऑफ गॉड है ना, जब वो ऊपर रहते हैं तो वो विष्णु की ग्लोरी, सैंग ऑफ विष्णुज बर्थ, देवता जैसे ही आते हैं तो वो कहते हैं कि हवा ही बदल जाती है हैवी, और फिर वो कहते हैं, वो असुर की बात करते हैं और असुर भी रो रहे हैं, इन सब की बातें करने लगते हैं, पीड़ा की, एंग्विश की। एंड देन ही सैंग ऑफ द डेमन, एंड एज ही सैंग द डेमन्स वेप्ट विद जॉय। तो धरती के वातावरण में, हालांकि उसके बारे में माँ ने कह दी बड़ी सुंदर बात, द वेरी एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ हैज चेंज्ड, इसके अंदर एक लाइटनेस है। मुझे पता नहीं ये हम लोग महसूस कर पाते हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा अगर आप, हम लोग जो 60 के हुए हैं, हम लोग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। गांव में जो 40 साल पहले वातावरण था, धरती का वातावरण, एक हैवीनेस, वो चली गई है। हालांकि उस समय सुपर माइंड हैड ऑलरेडी डिसेंडेड। अब आप सोचो वो कब की बात कर रही है माँ, जो हैवीनेस होता होगा वो सारा लिफ्ट अप। तो उस समय देवतुल्य विचार आना मनुष्य के लिए सहज हो गया है, वरना वो नीचे नहीं आ सकते, फिलोसोफर थिंकर आइसोलेटेड कहीं ऊपर अपने उसमें रहते थे। तो थॉट ऑफ गॉड क्या होता है, वह जो मलिन नहीं हुआ है धरती की चोट पहुंच के, वो अभी भी उस क्षेत्र में विचरण कर रहा है जहां कोई भी पेसिमिज्म, नेगेटिव, इसकी संभावना ही नहीं है। तो ये अवस्था है माँ की जिसमें वो आती हैं। आगे की बात बाद में, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। सिंस द मैन रिफ्यूज द मील आई हैड प्रिपेयर्ड विद सो मच लव एंड केयर, आई इनवोक द गॉड टू टेक इट। माई गॉड, Thou hast accepted my invitation. Thou hast come to sit at my table, and in exchange for my poor and humble offering, Thou hast granted to me the last liberation. My heart, even this morning so heavy with anguish and care, my head surcharged with responsibility, are delivered of their burden. Now are they light and joyful, as my inner being has been for a long time past. my body smiles to thee with happiness as before my soul smiled to thee. And surely hereafter thou wilt withdraw no more from me this joy. O my God, for this time I think the lesson has been sufficient. I have mounted the Calvary of successive disillusionments high enough to attain to the resurrection. Nothing remains of the past but a potent love which gives me the pure heart of a child and the lightness and freedom of thought of a God. Hum sab ke jeevan mein aisa hi ho. जय माँ.